ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम अध्याय चल रहा है 12। आज से हम 12 अध्याय शुरू कर रहे हैं सातवें स्कंद का, और बोर्ड पे जो श्लोक लिखा है श्लोक संख्या 6 हमारे पीछे बोलने प्रयास कीजिए। सुशीला मित्भिका दक्षा श्रद्धां जितेन्द्रिया यावतार्थं व्यवहरे स्त्रीषु स्त्रीनृत्येषु च सुशीलोमित्पृक्दक्षा श्रद्धानो जितेन्द्रिया यावदर्थं व्यवहरे स्त्रीषु कृष्ण शब्दार्थ हमारे पीछे दोहरा। सुशीला अत्यंत नम्र तथा शिष्ट, मित्रिका आवश्यकता से ना तो कम और ना अधिक भोजन करना, दक्षा कटु आलस्य से रहित सदैव कार्यरत, श्रद्धाना शास्त्र तथा गुरु के आदेशों में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला, जितेन्द्रिया इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने वाला, यावतर्थं जितना आवश्यक हो, व्यवहारेता बाह्य रूप से आचरण करे, स्त्रीषु स्त्रियों से स्त्री निर्देशिषु पुरुष, तो पुरुष जो स्त्री के वश में होते हैं, च भी। अनुवाद इस प्रकार है, वैसे से पीछे और 6 श्लोक भी हैं, हम इसका अनुवाद पढ़ते पहले। ब्रह्मचारी को सदाचारी तथा शिष्ट होना चाहिए, उसे ना तो आवश्यकता से अधिक खाना चाहिए और ना संग्रह करना चाहिए, उसे सदैव क्रियाशील तथा पटु होना चाहिए और गुरु तथा शास्त्रों के आदेशों में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, उसे अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखते हुए स्त्रियों से या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों से उतनी ही संगति करनी चाहिए जितनी की आवश्यकता हो या आवश्यक हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। ब्रह्मचारी को काफी सतर्क रहना चाहिए कि वह स्त्रियों या स्त्रियों से वशीभूत पुरुषों की संगति ना करे। यद्यपि भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाने पर उसे स्त्रियों तथा स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों से बोलना ही पड़ता है, किंतु यह संपर्क बहुत अल्प होना चाहिए और उसे केवल भिक्षा के संबंध में ही बातें करनी चाहिए। उसे उन व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए जो स्त्रियों के प्रति आसक्त होते हैं। हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपां सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरां राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के इस सप्तम स्कंद में युधिष्ठिर और नारद मुनि जी के बीच में चर्चा हो रही है, और युधिष्ठिर जी ने नारद जी से जो प्रश्न पूछे उसमें प्रहलाद महाराज के विषय में पूछा था, जो कि यहाँ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, और फिर पूरा प्रसंग बताया प्रहलाद महाराज जी के जीवन में, हिरण्यकशिपु का प्रकोप, प्रहलाद महाराज की दृढ़ता भक्ति में, और हिरण्यकशिपु जो है उनका वध किया नरसिंह भगवान ने, और इस प्रकार ये प्रसंग खत्म होने पर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि अब कुछ वर्णाश्रम के बारे में बताइए प्रैक्टिकल, कि किस प्रकार। प्रश्न बड़ा सुंदर था, प्रश्न किया था चौथे श्लोक में, बहुत सुंदर प्रश्न किया युधिष्ठिर जी ने, कहा कि महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे धर्म के उन सिद्धांतों के विषय में सुनने का इच्छुक हूं जिससे मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त कर सकता है। मैं मानव समाज के सामान्य वृत्ति परक कर्तव्यों तथा वर्णाश्रम धर्म के नाम से विख्यात सामाजिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्रणाली के विषय में सुनना चाहता हूं। तो इस प्रश्न में वो बोल रहे हैं कि उन सिद्धांतों को, वैसे तो धर्मराज स्वयं है वो युधिष्ठिर महाराज, फिर भी नारद जी से धर्म के विषय में जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि नारद जी के विषय में उन्होंने बोला कि आप जो हैं शांत जीवन तथा दया में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, और आपसे बढ़कर कोई यह नहीं जानता कि भक्ति किस तरह की जाए या ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार बना जाए। अतएव आप गुह्य धार्मिक जीवन के समस्त सिद्धांतों के जानने वाले हैं, और आपसे बढ़कर उन्हें अन्य कोई नहीं जानता। तो नारद जी 12 महाजनों में एक हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर भी जो हैं वो भी धर्म के पूरे ज्ञाता हैं, लेकिन नारद जी की गुणों का व्याख्यान कर उनसे आप क्या प्रश्न कर रहे हैं कि किसी भी मनुष्य के लिए जीवन का लक्ष्य क्या है और उसे कैसे प्राप्त करें, तो उसके सिद्धांतों का भी हमें बताइए। और फिर कह रहे कि मैं मानव समाज के सामान्य वृत्ति प्रयत्न कर्तव्य तथा वर्णाश्रम धर्म के नाम से विख्यात सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति की प्रणाली के विषय में भी सुनना चाहता हूं। तो फिर नारद जी ने वर्णन करना शुरू किया चार वर्ण और चार आश्रमों के विषय में इस अध्याय में, इससे पिछले अध्याय में, और बताया कि किस प्रकार आध्यात्मिक और सामाजिक दो तरह से पूरे के पूरे समाज को बांटा गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग्य, कि मैंने जो है इस पूरे समाज को चार वर्ण और आश्रमों में इसका विभाजन किया है, और जिसे सामाजिक और आध्यात्मिक के रूप से भी जानते हैं। तो आध्यात्मिक किसी के लिए भी है वो क्या है, चार वर्ण और आश्रम में हमारे जो समाज का बंटवारा है वो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये चार प्रकार के जो सामाजिक दृष्टांत हैं इससे हम समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा समाज इन चार विभागों में बटा हुआ है। कुछ लोग तो ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं, कुछ क्षत्रिय कुल में पैदा होते हैं, कुछ वैश्य कुल में पैदा होते हैं और कुछ शूद्र होते हैं। लेकिन ये भी बोला गया कि कलयुग में तो जो भी जन्म लेता है वो शूद्र ही है, क्योंकि कलयुग के अंदर ये वर्ण और आश्रम जो है अब देखे नहीं जाते, क्योंकि उस प्रकार के विधि पर कार्य किए नहीं जाते। फिर भी शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि हम लोग फिर भी अगर समाज को इस परिद्वेश में ढालें या उसके हिसाब से बांटने का प्रयास करें तो फिर भी हम देखेंगे जो लोग इस समाज में रहते हुए ब्राह्मण वर्ग जैसे कार्य करते हैं, जैसे पहले युगों में जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे उनका कार्य होता था वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, ठीक है ना, ज्ञान देना और ज्ञान लेना, दान देना और दान लेना, तो ये उनके कार्य होते थे। ब्राह्मणों को केवल यही कार्य करना होता था, वेदों का अध्ययन करना और वही ज्ञान लोगों को देना। जब ब्राह्मण इस प्रकार के अपने वृत्ति पर कार्य करते थे, अपने ब्राह्मणत्व को ठीक प्रकार से उसका एग्जीक्यूशन करते थे, तो जितने भी क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय अर्थात जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, राज्य चलाते थे, सुरक्षा करते थे, तो वो लोग इन ब्राह्मणों से क्या लेते थे, आज्ञा प्राप्त करते थे, इन ब्राह्मणों को सदैव इनका मान सम्मान करते थे और इनके संरक्षण में रहकर अपने राज्य का कार्य करते थे और धर्म की रक्षा करते थे। जो वैश्य होते थे वो लोग भी अपना वृत्तिपरक कार्य करते थे, उनका कार्य था कृषि गोरक्षा वाणिज्य, अर्थात कृषि खेती इत्यादि करना, गोरक्षा गाय की रक्षा और उसका संवर्धन करना, उनका पालन करना, और वाणिज्यम लेन देन बैंकिंग इत्यादि ये कार्य करते थे। और फिर शूद्र के लिए बताया जाता था कि उसे इन तीनों वर्णों में रहने वाले लोगों की क्या करनी है, सेवा करनी है। केवल वो इतनी सेवा करने मात्र से ही, क्योंकि उसका जो वृत्तिपरक कार्य है सेवा करना, उसका मानसिक स्तर इस प्रकार का नहीं है, जिस कुल में पैदा हुआ है उसमें उसको केवल वही सिखाया जाता है और वो उसी के लिए उसकी टेंडेंसी भी सेवा करने की होती है। एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं जो सेवा करने के इस तरह के भाव जब हम लोग देवी वर्णाश्रम धर्म में आते हैं, अर्थात जब कृष्ण भावनामृत में आते हैं, तो यही वृत्तिपरक कार्य एक शूद्र के लिए बहुत आसान हो जाता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में भी तो हमें सेवा ही करनी होती है, जो सेवा मिल जाए करना है ना, गुरु ने जो सेवा बताई, अथॉरिटी ने जो सेवा कही वो करनी। लेकिन अन्य वर्गों में चाहे वो वैश्य हो चाहे क्षत्रिय हो, तो उन कार्यों को करते हुए कृष्ण भावनामृत में आके कई बार अपने उस अहंकार को, उस घमंड को, कि क्योंकि क्षत्रियों के अंदर ही प्रभाव रहता है हमेशा कि आई एम द डूअर, मैंने कुछ कर दिखाया, मैं कर सकता हूं, मैं हरा सकता हूं, तो ऐसा भाव रहता है हमेशा। लेकिन एक शूद्र के अंदर सदैव रहता है हाथ जोड़कर हम्बली कार्य करने की वृत्ति, तो वो कृष्ण भावनामृत में आकर वो वरदान बन जाती है उसके लिए कि मुझे तो हाथ जोड़कर बस काम करना है। और बाकी दूसरे लोगों को हो सकता है संघर्ष करना पड़ता हो अपनी वृत्ति को ठीक करने के लिए। तो ये चार वर्ण आश्रम में इस प्रकार समाज का विभाजन था। और अगर आज के परिवेश में देखें तो जो लोग आज के दृश्य में देखें तो जो टीचर्स हैं और इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं पढ़ने पढ़ाने वाले, तो इनको हम ब्राह्मण कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट वगैरह हैं, ये सब लोग जो हम इंटेलेक्चुअल लोग, इनको हम लोग ब्राह्मण की श्रेणी में आज के परिवेश में डाला जा सकता है। और जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, देश की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, पुलिस में हैं, इनको हम क्षत्रिय कहकर इस विभाग में बांध सकते हैं, क्योंकि वृत्ति पर कार्य है तो वो वहां वो कार्य कर रहे हैं। और जो बिजनेस क्लास है उसे हम वैश्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, और जो सर्विस क्लास लोग हैं इसके अलावा उन सबको हम शूद्र कैटेगरी में डाला जा सकता है। प्रभुपाद जी कहते थे इस प्रकार ये फिर विभाग हो गया चार। तो इन सब वर्णों और आश्रमों का उद्देश्य क्या था? भगवान ने कहा मया, अच्छा मैंने इसकी क्या की है, उत्पत्ति की है इन आश्रमों की। उद्देश्य क्या था? इस सब का उद्देश्य है कि जिस प्रकार चार वेद हैं, उन चार वेदों में भी हम देखते हैं कि कहीं पर तामसिक, राजसिक और सात्विक मेंटालिटी के अकॉर्डिंगली ही वेदों में भी शिक्षाएं दी जा रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि पूरे के पूरे समाज में, मानव समाज में अलग अलग वृत्ति के लोग रहते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग वेदों की उन ऋचाओं से प्रसन्न हो जाते हैं जिसमें उनको कुछ कर्म करने के बाद कुछ लाभ की प्राप्ति होती है, कुछ अपने उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। श्री श्री राधा राधे कृष्ण भगवान की, कृष्ण बलराम की। तो उस प्रकार उनको अपना पसंदीदा प्रसंग वेदों में मिल जाता है। जैसे कोई देहात में बुद्धि से बहुत ज्यादा ग्रस्त है, उसे संतान इत्यादि की अगर इच्छा है या और अधिक धनी बनना है या उसको अपने पूरे दूसरे काम कुछ कार्य करने हैं, अभी वो देहात में बुद्धि में है तो उसके लिए ये सारी चीजें सारे क्या है, जीवन का लक्ष्य बन जाता है। इसलिए वो मंदिर में जाके या पंडितों के पास जाके वेदों का अध्ययन कर वो मुक्ति नहीं चाहता। वो क्या चाहता है कि मुझे इस समय जो पीड़ा है, शारीरिक, मानसिक या फिर जो मेरी इच्छाएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूं, वो पूरी हो जाए बस किसी तरह। मुक्ति या भगवान का धाम मेरा लक्ष्य नहीं है। तो वेदों की उन ऋचाओं से वो आकर्षित होते हैं और फिर अलग अलग लोकों में जाने का प्रयास करते हैं या फिर उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इससे आगे वो लोग हैं जो कहते हैं, यहां तो मैंने बहुत देख लिया, बहुत खा लिया, बहुत इंजॉय कर लिया, मैंने सुना यहां से ज्यादा सुख कहां है? स्वर्ग लोकों में। तो स्वर्ग की कामना होती है, फिर अलग अलग प्लैनेट्स में जाने की कामना होती है। तो फिर उस प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करना शुरू करता है व्यक्ति, देवताओं की विशेष पूजा करना शुरू करता है। और जब उसको पता चलता है स्वर्ग में इतने लाभ है कि वहां पर तो टॉयलेट्स ही नहीं है, तो आपको यही कैसा लाभ है कि टॉयलेट ना हो? और इसका मतलब यह है कि वहां जो भी खाते हैं या जो भी पीते हैं वो मल मूत्र के रूप में तब्दील नहीं होता, वो ब्लड के रूप में तब्दील हो जाता है। बड़ा सुख है, तो टॉयलेट ही नहीं। यहां तो रोज कुछ भी खा के अगले दिन पता लगता है कि जाना नहीं जाना, जाए ना जाए, मुश्किल होती है लोगों को, उधर तो ठीक लगता है। फिर दूसरा, वहां पर यहां के वनों को, पार्कों को तो आप देखेंगे कि फूल तो होते हैं लेकिन खुशबू नहीं होती है ना। लेकिन बताया जाता है वहां पर इस प्रकार के वन है कि जहां पर पूरा का पूरा सुगंधित हवाएं बह रही होती है। यहां पर जूस की दुकान खुली होती है, वहां पर सोमरस इजीली उपलब्ध होता है। और वहां पर की सुंदरता लोगों की बताई गई है इस प्रकार की है कि यहां पर तो सुंदरता बिल्कुल खत्म हो जाती है कुछ समय के बाद, लेकिन वहां पर जो अप्सराएं हैं वो बहुत सुंदर है। और उसी स्वर्ग में जाने के लिए हम देखते हैं कि कई धर्मों में विशेषकर लोगों को बताया जाता है कि आप बस ऐसा कर दीजिए, इसको मार दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए भगवान का नाम लेकर, और आप जाएंगे सीधा कहां? आप जन्नत में जाएंगे। और वहां पर संख्या बताइए आपको, वहां पर 72 हूरे मिलेंगी। क्या आप एक के साथ बैठे हैं, फिर दूसरे के साथ बैठे, फिर तीसरे के साथ बैठे, इस प्रकार आप आनंद लेंगे। यहां कुछ नहीं है, सब बेकार है, उधर जाओ उधर जाओ। तो कहते वहां जाने के लिए क्या करना है? वहां जाने के लिए तुम्हें मरना है। तुम यहां पर बस इस हिसाब से चलो, जो उनका इंटरप्रिटेशन होती है, इसको मार दो, उसको मार दो, जो इसमें नहीं है उसको मार दो, और तुम सीधा कहां जाओगे? मरते ही जन्नत चले जाओगे। अभी किसी ने एक वीडियो दिखाया जिसमें आजकल जैसे मिडिल ईस्ट साइड में लड़ाई हो रही है IS समथिंग उसकी, तो वहां पर भी लोग जिहाद के नाम पर और IS इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए लोगों को मार रहे हैं। तो अब उनको बोला गया कि तुम अगर इस तरह लोगों को मारोगे तो आप कहां जाओगे? जन्नत जाओगे। लेकिन उसी कहीं ऐसे कुरान में कहीं लिखा है कि अगर तुम किसी स्त्री के हाथ मारे जाते हो तो जन्नत नहीं जाओगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर जो लेडीज थी, उन्होंने देखा कि हमारे आदमी को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, तो वहां की लेडीज ने अपनी खुद की फोर्स बना ली, सबके हाथ में गन, बढ़िया ट्रेनिंग ले ली, और अब वो गन लेकर उन आतंकवादियों का जो है सामना कर रही है और खदेड़ रही है, उनको मार रही है। अब उनकी गोली से बचने के लिए वो लोग पीछे जा रहे हैं। उनको मालूम है उनके हाथ से गोली खाली, तो जिसके लिए मैंने इतना कुछ करा, जितने मारे इतने करे, तो जन्नत जाने की जगह कहां जाऊंगा, जन्नत जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार पूरे संसार में लोग जन्नत और जहन्नम के चक्कर फंसे हुए हैं। और बताया जाता है कि वहां पर इस प्रकार की रंगरलियां मना सकते हो आप। एक बार एक व्यक्ति इसी प्रकार कल्प वृक्ष होते वहां पर, है ना, तो उसको ऐसे स्वप्न आया कि हाँ काश मैं भी उधर हो। तो वहां पर जो भी आप इच्छा करते हो आपको मिलता है। वहां पर परिजात नाम के वहां पर पौधे हैं, सनंदन नाम के पार्क है, वहां पर सुंदर सुंदर नदियां बह रही है। तो कुरान में जन्नत और जहन्नम के बारे में हो सकता है बहुत सारी डिस्क्रिप्शन ना दी, वहां हूरों के नाम नहीं दिए गए, लेकिन आप अगर वैदिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पर हूरों के नाम दिए गए, मेनका, उर्वशी, पूर्वचिति, रंभा, इनके नाम भी दिए। और वहां के अधिकारी जो है मिस्टर इंद्र जी, उनका भी नाम है, उनकी वाइफ शची, उनका भी नाम है। तो वहां के डॉक्टर अक्षय कुमार है ना, उनका भी नाम है। तो हर चीज का वहां पर और डिस्क्रिप्शन मिलती है। और जो हेलिश प्लैनेट्स है वहां पर बताया कि बस अगर कुरान के आधार पर देखें तो उनको बोलते हैं जो तुम आयतों के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपको कहां जाना पड़ेगा, जहन्नम जाना पड़ेगा। और वहां पर क्या है, वहां पर आग के दरिए हैं, मतलब दरिए इस बात को जिसमें आग लगी हुई है, वहां डाला जाएगा आपको और वहां सड़ाया जाएगा, तपाया जाएगा। लेकिन हमारे यहां पर वैदिक ग्रंथों में इससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन मिलती है उस नर्क की, जहां पर बताया गया कि 28 प्रकार के मुख्य नर्क हैं और अलग अलग पाप की अलग अलग नर्क में अलग अलग सजा मिलती है। नर्कों के नाम तक दिए, वहां के कीड़ों के नाम दिए जो मारते हैं काटते हैं। तो इन सब वेदों की ग्रंथों की रचना से प्रभावित होकर लोग फिर स्वर्ग जाना चाहते हैं कि वहां पर मैं ऐश करूंगा, वहां पर मैं आनंद लूंगा, वहां पर मैं और जो है इंद्र तृप्ति करूंगा। तो कुछ लोग उससे आकर्षित होते हैं। तो इसलिए वेदों में कर्मकांड है, ज्ञान कांड है और उपासना कांड है, लेकिन इसकी संख्या परसेंटेज किस प्रकार है, जो ज्यादा करना चाहता है उसके लिए ज्यादा परसेंटेज है। उपासना कांड बहुत कम दिया गया है क्योंकि सात्विक वृत्ति के लोग समाज में बहुत कम होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे भक्त बन जाए। एक बार हिजमिस राधानाथ स्वामी महाराज किसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में, फर्म नहीं थी मतलब स्टूडेंट्स थे, वहां प्रवचन दे रहे थे और ये कहीं एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे तो हमने सुना। तो उन्होंने बताया कि एक जगह प्रवचन देने के बाद उन्होंने बोला कि किसी का कोई प्रश्न है स्टूडेंट से, तो एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया और जैसे उसने हाथ खड़ा किया तो पूरे हॉल में हो ऐसा शोर सा हुआ और वो आगे आया, स्टेज पर आ गया। तो जब लोगों ने हो किया तो महाराज समझ गए कि ये कुछ वेल नोन पर्सनैलिटी है, कोई तिकड़मबाज व्यक्ति है। तभी पूरा हॉल जो है गूंज रहा था इसके आने पर, और महाराज ने माइक उसको दिया कि पूछो अपना प्रश्न। उसने कहा कि महाराज आप भक्ति की बात कर रहे हैं, प्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि अगर सारे के सारे भक्त बन गए तो समाज चलेगा कैसे। वो गजब की तालियां बजी। सच्ची प्रश्न कितना लॉजिकल है कि अगर सारे भक्त बन गए, सारे हरे कृष्णा करने लग जाए, मंदिर में आके बैठ जाए, तो कैसे चलेगा समाज, कैसे चलेगा, गाड़ी कौन चलाएगा, है ना, डॉक्टर कौन बनेगा, वकील कौन बनेगा, खेती कौन करेगा। तो उनके प्रश्न के खत्म होने के बाद महाराज ने माइक लिया, थोड़ी देर तक साइलेंस रहा, लोगों को लग रहा था पता नहीं क्या हो क्या होगा। फिर महाराज ने कहा चलो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। महाराज ने कहा कि अगर इस देश में सारे लोग ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तुम्हारी तरह, तो ये देश कैसे चलेगा। और फिर इतने में तालियां बजने लगी क्योंकि इस प्रश्न में उनके पूछे गए पहले प्रश्न का उत्तर था। क्या था कि ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। अगर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, वकील कौन होगा, खेती कौन करेगा, है ना, दुकान कौन चलाएगा, कोई नहीं चलाएगा। इसका मतलब सबको पता चलेगा सीएम में बेनिफिट सारे में बन जाते, ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार हर कोई सीएम नहीं बन सकता या हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, उसी प्रकार हर कोई भक्त भी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार इन वेदों में बहुत बहुत सी इनकी फ्लावरी जगलरी जिसे बोलते हैं वर्ड्स हैं, जिनसे लोग उन्हीं लाभों से आकर्षित हो जाते हैं। जैसे मंदिर है, इस मंदिर में भी जो आते हैं लोग, हर व्यक्ति भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के लिए थोड़ी आते हैं। भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, क्या बोलते हैं, चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, आरती जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भरतृषभ। एक ऐसे लोग जिस शरीर में कहीं समस्या है, दुख है, तकलीफ है, कहीं इलाज नहीं हो रहा, तो भगवान के चरणों में आते हैं कि भगवान मेरा ये काम कराइए प्लीज। अर्थार्थी ऐसे लोग जो अर्थ के लिए आते हैं, मतलब धन के लिए आते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आते हैं, भगवान अब मेरा कोई आसरा नहीं है, अब आप ही आप हैं, तो आप मेरी झोली भरिए तो फिर मैं उसमें थोड़ा सा निकाल के आपकी गुल्लक में डाल दूंगा। तो अर्थार्थी भी आते हैं। तीसरे हैं जिज्ञासु, वो लोग जो इंक्विजिटिव हैं, जो जानना चाहते हैं संसार को, समझना चाहते हैं भगवान को, शरीर को, इस पूरे आध्यात्मिक वातावरण को समझना चाहते हैं, क्यों बना ये संसार, क्या लक्ष्य था इसके पीछे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज यहां पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये बताइए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो बताइए उसके प्रिंसिपल, और फिर चार वर्णराज आश्रम की क्यों स्थापना हो। और चौथे हैं ज्ञानी, जो जान जाते हैं कि ये सारा संसार पांच तत्वों से बना हुआ है, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, हमारा शरीर भी इसी से बना है, और इसके अलावा तीन एलिमेंट हो रहे हैं मन, बुद्धि, अहंकार, और ये भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, और एक सुपीरियर एनर्जी है जो आत्मा है जो शरीर के अंदर है। और इस प्रकार वो सारा ज्ञान होने के बाद भगवान कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है क्योंकि समझदार है। तो जो एक मंदिर में लोग अलग अलग इच्छा से आते हैं भगवान के आगे, हर कोई शुद्ध प्रेम भक्ति के लिए नहीं आता, तो उसी प्रकार शास्त्रों में भी या हमारे पुराणों में भी अलग अलग मेंटालिटी के हिसाब से उसका विभाग किया गया है। 18 पुराण है तो 6 तामसिक पुराण है, जो लोग तामसिक वृत्ति के हैं, तामसिक भोजन करते हैं, तामसिक संगति रखते हैं, तामसिक का मतलब इग्नोरेंस या ऐसा गुण जो बहुत लोअर पर बोला जाता है जिसे, तो ऐसे लोग बताते हैं वो हमारे, क्योंकि तमो गुण के अधिष्ठाता देव है शिव जी, तो शिव जी से आकर्षित हो जाते हैं, उनकी भक्ति से आकर्षित होते हैं, उनकी सेवा पूजन इत्यादि करते हैं। वैसे ये इससे संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी एक किसी पुलिस वाले ने बताया था एक बार कि जब समाज में लोग कावड़ लेने जाते हैं ज्यादा, तो अचानक सोसाइटी में ना चोरियां और उसे बंद हो जाती है, तो मैं समझ नहीं पाया, तो उसने बताया, कहने का मतलब यह है कि जनरली जो तामसिक वृत्ति के लोग हैं ना, वो सब उस दिन पूजा पाठ में लगे होते हैं, तो कावड़ लेने गए तो यहां कुछ नहीं हो रहा लेकिन ऐसा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि इसका मतलब ये थोड़ी कि जो सारे के सारे ऐसे लोग वो जाते हैं, काफी अच्छे लोग भी जाते हैं। तो कहने का मतलब कि जो तामसिक वृत्ति के लोग हैं या जिनका जो इग्नोरेंस में रहते हैं, तमोवृत्ति के हैं, वो लोग शिवजी से आकर्षित होते हैं। और आप देखेंगे कई बार वो लिखते भी हैं, भोले की फौज करेगी मौज, और वो शिवजी को दिखाते हैं वो कुछ खाते पीते हुए, भांग शिवरात्रि में खूब भांग पीते हैं, है ना, क्योंकि शिवजी भी पीते हैं, हम भी पियेंगे। अरे शिवजी ने तो हलाहल विष पिया था समुद्र मंथन के समय, सारा का सारा जो जहर निकला था जो पूरे समाज खत्म कर सकता था वो उन्होंने कंठ में धारण कर लिया था, इसलिए नीलकंठ कहते हैं उनको। हम लोग उनको क्या ना करें, उनका उस प्रकार अनुकरण ना करें कि जो उन्होंने कहते हैं वो हम भी करेंगे। उन्होंने तो गले में रखकर निकाल दिया था बाद में, है ना, गले में धारण कर लिया था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गले तक लेते हैं, नीचे भी ले लेते हैं, और फिर झूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के लोग उनसे आकर्षित होते हैं जो उनको लगता है खाने पीने की छूट है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उन पुराणों में जिनमें जो तामसिक पुराण है उसमें शिव की महिमा भी बहुत है, कई जगह पे उनको पूर्ण भगवान बता दिया गया है, तो लोग कहते हैं जी हमने शिव पुराण पढ़ा, हमने पढ़ा उसमें ये भी लिखा था, उसमें ये भी लिखा था, लेकिन कई जगहों में लिखा है कि मैं विष्णु से ही हूं, लेकिन फिर भी वो आकर्षित होते हैं शिव की भक्ति से, उनको परम मानते हैं। फिर 6 देवी पुराण भी है, जो राजसिक वृत्ति के लोगों को पसंद आते हैं। रजोगुनी मतलब वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग हैं, मुझे ये करना है फिर वो करना है, मैं सब कुछ करना चाहता हूं, सब कुछ मेरा हो, मैं और कमाऊं और बड़ा बनूं, दुनिया में लोग मुझे सब जाने पहचाने। तो लोभ के कारण वो फिर देखते कि माध्यम क्या है वो सब प्राप्त करने का। तो फिर उनको बताया जाता आप ये अनुष्ठान कीजिए, ये कर्म कीजिए, इससे आपको ये लाभ पहुंचेगा, है ना, इतना यहां पर ये चढ़ाइए इसे ये लाभ पहुंचेगा, ऐसा करिए ये पहुंचेगा। तो इस प्रकार की फिर वो प्रलोभनों से वो सब करने का प्रयास करता है जिससे कि उसको वो लाभ पहुंचे जिसके के लिए वो प्रयास कर रहा है। और उसमें देवताओं की भक्ति से उन रिचुअल से आकर्षित होता है, देवी मां की भक्ति से आकर्षित होता है। तो उसमें ये बता दिया कि सब कुछ देवी से है, बिल्कुल ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है देवी, दुर्गा जी ने कहा जाता है, जिन्होंने ये सारा जो कंट्रोलर है मटीरियल वर्ल्ड की। लेकिन जब और व्यक्ति उनकी भक्ति कर कर या उनकी पूजा अनुष्ठान कर कर जब उनको लाभ पहुंचने लगते हैं तो एक समय पर आके वो बोलता है कि मैया का दिया मेरे पर सब कुछ है, बहुत दिया माता रानी ने, शिव जी का ना बहुत दिया, बहुत सब कुछ ठीक, अब मैं क्या चाहता हूं, अब निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करूंगा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैया बस तो अपने चरणों में रख, है ना, ऐसा भी होता है। तो फिर जब मैया देखती है कि भैया ये निस्वार्थ हो गया भोग कर करके इसके, अब मन उब गया है, धन्यवाद कर रहा है, निस्वार्थ होता जा रहा है, तो अब ये निस्वार्थ हो ही रहा है तो मेरे पास क्यों हो रहा है, भाई मेरे पास तो 500 का नोट है, 500 से ज्यादा तो मैं दे नहीं सकती, अगर ये अच्छा बच्चा बन भी गया है और इस अच्छे बच्चे को मैं कुछ देना चाहती हूं तो 500 से ज्यादा तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या दूं, उसके पास भेजू जिसके पास 1000 का नोट है, जो उसको ज्यादा दे सकता है, इसमें कृपा कर सकते हैं, इसको जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाला जा सकता है। तो ऐसे देवी ऐसे शिव जी क्या करते हैं, ऐसे बच्चे को हाथ पकड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा देते हैं। यहां पर बैठे हुए भक्त खूब हनुमान चालीसा पढ़ चुके हैं, खूब मंदिर में चक्कर लगाए, 16 सोमवार भी रखे होंगे, देवी भी गए होंगे, वैष्णो देवी भी गए होंगे, सबने सब कुछ किया है। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जो भी मझधार में है, जिन्हें लगता नहीं जी नहीं, सुन तो लिया है बात, तो समझ गए कि कौन बड़ा है कौन उनका वो है, लेकिन अगर उनको नहीं पूजा तो नहीं किया तो पाप चढ़ेगा, नाराज हो गए तो डर लगता है, नहीं छोड़ नहीं पाते। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें बोला गया है शुभ ग्रह भूत पिशाच मुक्ता, जो व्यक्ति भगवान गोविंद का भक्त है उसके सारे के सारे ग्रह शुभ हो जाते हैं, मतलब उसको अपनी 10 अंगूठियां पहनने की जरूरत नहीं है, शुक्र शनि ये मोती वो मोती, नहीं 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 नहीं, जो गोविंद भक्ति विहताम नारायण, जिसने भगवान श्री गोविंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, आप उसे पत्थर पुत्थर पहनने की, ये ग्रह भारी वो ग्रह भारी, अरे सबके ऊपर भारी श्री कृष्ण मुरारी। सारे के सारे नक्षत्र ये सब उनके चरणों में बैठे हैं, उनके इशारों से चल रहे हैं, जो जिनके भय से सूर्य उगता है रोज, भगवान के भय से, मत भयात भगवान कहते हैं, मत भयात वाति वातो एव, वर्षा होती है ये हवा चलती है मेरे भय से, अगर मैं भय ना दिखाऊं तो शायद छुट्टी कर लेंगे, आज संडे है तो भी सूर्य आएंगे, बादलों से ढके हुए हैं, नो वरी, लेकिन उनके भय से चलता है सब कुछ। तो किसके ऊपर, जो भगवान का भक्त गोविंद भक्ति वहता नारायण, जो भगवान गोविंद का भक्त है वो इन उसके सारे ग्रह शुभ हो जाते हैं, कोई पत्थर पत्थर पहनने की आवश्यकता नहीं, फिर उसको कोई इधर उधर के अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। और खासकर कह रहे भूत पिशाच, बहुत सारी संख्या में भूत घूम रहे जो आपको दिख नहीं रहे, हम भी नहीं दिख रहे, तो ये भूत सटल बॉडी में होते हैं, आत्महत्या कर ली, कहीं से छलांग मार दी, किसी ने धक्का मार दिया, किसी ने जबरदस्ती मार दिया, अकाल मृत्यु हो गई, उस तरह कुछ कर। तो कई बार लोग इस प्रकार जो आत्महत्या इत्यादि कर लेते हैं, ये सोचकर कि शरीर में बड़े कष्ट है, ये सोचकर कि अभी इतने लोन देने थे, या चार्वाक मुनि के अनुसार खाओ पियो ऐश करो वाली मेंटालिटी के हिसाब से लोग उसे लोन ले लेते हैं और फिर कहते हैं लोन कौन चुकाए, देखो मैं तो जहर खा रहा हूं, खत्म नहीं, खत्म नहीं होगा लोन, है ना, उसको जो है प्रेतात्मा की योनि मिल जाएगी। 84 लाख में प्रेतात्मा योनि भी होती है। और कई बार ऐसे प्रेत घूम रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं किसी ना किसी को, तो जो इम्प्योर होता है, ज्यादा नहाता धोता नहीं है जो, और कंटेमिनेटेड रहता है हमेशा, तो लगता है ये अच्छी फील्ड है, उसमें घुस जाता है और फिर उसके अंदर जाकर अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता है। आप कभी गए होंगे मेहंदीपुर बालाजी, गए होंगे? ठीक, क्या होता है गुरु जी वहां पर? वहां पर जो लोग, जिनको शरीर के अंदर कोई ना कोई प्रेत आ जाता है, तो वो वहां पर नाच कूद रहे होते हैं, लड़की के अंदर लड़की की आवाज आ रही है, लड़के के अंदर लड़की की आवाज आ रही है, और बहुत बुरी स्थिति रहती है कई बार। तो इस प्रकार एक प्रेतात्मा योनि भी, तो मृत्यु से आत्महत्या से चक्र खत्म नहीं होता। कह रहे जो भगवान की गोविंद भक्ति बहता, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, तो भूत पिशाच भी निकट नहीं आते, क्योंकि सारे के सारे भूतों के भूतनाथ कौन है? शिव जी। और शिव जी किसके भक्त हैं? भगवान कृष्ण के। फिर कह रहे हैं ब्रह्मा आदि देवगण प्रसन्न, जिन लोगों को लगता है कि मैं इसकी भी करता था, उसकी भी करता था, यहां भी जाता था, ये अनुष्ठान भी करता था, सुबह सुबह ये भी पढ़ता था, वो भी पढ़ता था, अब ये कहते हरे कृष्णा करो, सब छोड़ दो, तो बाकी लोग कहां जाएंगे? तो कह रहे हैं श्लोक में गोविंद भक्ति बहता, जो भगवान गोविंद का भक्त है, वो कह रहे ब्रह्मा आदि देवगण प्रसन्न, उससे उस व्यक्ति से ब्रह्मा से लेकर, ब्रह्मा इज द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ द यूनिवर्स, उन्होंने सारा यूनिवर्स वगैरह बनाया है भगवान की इच्छा है, तो पहले देवता वही है। कह रहे ब्रह्मा से लेकर और जितने देवता हैं वो सारे प्रसन्न हो जाते हैं, किससे? गोविंद भक्ति बहता, जो व्यक्ति गोविंद का भक्त है। अच्छा, फिर भी लेकिन दिवाली आती है, दिवाली में लक्ष्मी की बड़ी याद आती है प्रभु जी, है ना? आपने कृष्ण तो बोली भी है, करते हैं उनकी भी करते हैं, लेकिन फिर भी ना, मतलब वो लक्ष्मी जी और गणेश जी, वैसे उनका संबंध नहीं कोई आपस में, वो दूसरी फैमिली की, वो दूसरी फैमिली की, बट फिर भी वो मार्केट में बिक रहा है तो लेकर आना पड़ता है कि ये बिजनेस में लाभ देंगे, ये धन देंगे, बढ़िया है। चल रहा है लोगों का, चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। कह रहे हैं इसके अगली लाइन में लक्ष्मी स्त्रह गृह मंदिर चा, अरे भैया गोविंद भक्ति बहताम नारायण, जो भगवान गोविंद का भक्त है, गोविंद भगवान साक्षात कृष्ण, सहस्त्र लक्ष्मियां जिनके चरण कमलों में सेवा अर्पित कर रही हैं, लक्ष्मी सहस्त्र से ब्रह्म सेव्य माना, वैकुंठ में गोलोक में हजारों लाखों लक्ष्मियां उनके चरणों में बैठी हुई हैं। तो जब ऐसे गोविंद घर में आ जाएंगे तो अपने पति को छोड़ के लक्ष्मी भी हो जाएगी, ऐसी लक्ष्मी अपने पति के चरण कमलों में रहती है, भगवान उसको सदैव अपने हृदय में रखते हैं। तो लक्ष्मी जी का वास वहां है जहां नारायण का, कृष्ण का वास है। तो किसी को लगता नहीं धन प्राप्ति के लिए मुझे यहां जाना चाहिए, या उस चीज को करने के लिए वहां जाना चाहिए, वो डिमांड को पूरी करने के लिए वहां जाना चाहिए। अरे अगर तुम्हें डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से तुम्हारी जान बचाना होगी तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर वहीं बैठे हैं कि नहीं? गोविंद भक्ति है, उसका घर मंदिर बन जाता है, स्थित मंदिर है, मंदिर जहां पर गोविंद है, जहां पर राधा रानी है, जहां ये सारी उनकी एक्सपेंशन है। तो इस प्रकार पूरे के पूरे सिस्टम्स को बनाया गया ताकि जीवात्मा इस संसार में संघर्ष करते हुए, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे कि स्कूल के अंदर प्री केजी भी है, केजी भी है, फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक की क्लासेस है, तो वहां पर एडमिशन होने का मतलब यह है कि आज नहीं तो कल धीरे धीरे बच्चा ट्वेल्थ करके बाहर निकल जाएगा। तो स्कूल का निर्माण इसलिए किया गया ताकि हम लोग यहां से जितने बच्चों को भी लाएं और एक जगह से निकाल दें ट्वेल्थ करने के बाद। उद्देश्य क्या है? सबको ट्वेल्थ करा दिया जाए, कोई आर्ट साइड में करेगा, कोई कॉमर्स साइड में करेगा, कोई साइंस साइड से निकलेगा, ठीक है ना, अपने अपनी वृत्ति के अनुसार। उसी तरह इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड की जो रचना हुई है और इसमें जो हम सब लिविंग एंटिटीज हैं, इन सब एंटिटीज को यहां पर डाला गया जिनकी इच्छा थी इस संसार को भोगने की, तो ये एक स्कूल के समान है। और यहां से भी तीन प्रकार से जीव बाहर निकलते हैं, कुछ ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, कुछ परमात्मा रियलाइजेशन के बाद वैकुंठ तक जाते हैं, और कुछ लोग गोलोक वृंदावन धाम में जाते हैं भगवान कृष्ण। तो जो निराकार की भक्ति करते हैं, जैसे अन्य ग्रंथों में या हमारे ग्रंथों में कई जगह इसकी चर्चा मिलती है, प्लस कई और धर्मों में भी कि भगवान का या जो ईश्वर है उसका रूप नहीं है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तीन तरह से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। तो कई धर्म उसको निराकार के रूप में पूछते हैं। सेकंड रियलाइजेशन है परमात्मा रियलाइजेशन। नहीं नहीं, निराकार तो है लेकिन साथ ही साथ हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, आपके हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है। हृदय सन्निविष्ट, भगवान कहते मैं हृदय में स्थित हूं। ये सेकंड रियलाइजेशन। और टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है भगवान इति शब्द थे, अर्थात उन परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण नारायण की जो है पर्सनैलिटी है, उनका एक रूप है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ईश्वर तो बहुत है, कंट्रोलर तो बहुत है, बट परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। और सच्चिदानंद विग्रह उनका रूप है, विग्रह है, सच्चित आनंद का बना हुआ। अनादिरादि गोविंद, वो सबके आदि है बट उनका आदि कोई नहीं, वो अनादि है। आदि का मतलब जहां से सब कुछ निकलता है, सबसे पुराने, वो सबके आदि है, वो सबकी शुरुआत है लेकिन उनकी शुरुआत कोई नहीं है। अगर भगवान की भी कोई शुरुआत है तो फिर भगवान वो हुआ जिसने शुरुआत की थी। कोई कहेगा फिर तो देवकी के यहां से आए थे भगवान जी तो 5000 साल पहले, ये तो लीला करने आए थे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं भगवान, 16 साल के बच्चे हैं, 16 साल के, वो आध्यात्मिक जगत की बात है। तो वहां पर हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं भगवान, गोलोक वृंदावन धाम, उनका आदि कोई नहीं। फिर कह रहे सर्व कारण कारणम, ही इज द कॉज बिहाइंड एवरी कॉज, वही कारण है हर चीज के, इस मटीरियल वर्ल्ड के वो कारण है, इस संसार में होने वाली हर उथल पुथल के कारण वो है, उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो इस प्रकार बताया गया। तो ये रियलाइजेशन टॉप मोस्ट रियलाइजेशन कि वो खाते क्या है, पहनते क्या है, रहते कहां है, किन के साथ खेलते हैं, कब उठते हैं, कब गौचारण के लिए जाते हैं और किस प्रकार उनके शरीर से ही और एक्सपेंशन होते हैं बलराम जी का, फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह बनता है, चतुर्व्यूह से कर्ण दक्षा विष्णु आते हैं, फिर गर्भ दक्षा विष्णु आते हैं, फिर शिरो दक्षा विष्णु आते हैं, फिर शिरो दक्षा विष्णु किस प्रकार हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में चले जाते हैं, फिर इसी प्रकार विष्णु की जो शरीर की निकलने वाली कांति, भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति को लोग ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। उस ब्रह्म ज्योति से जब कुछ कोई प्रकट होना होता है उनको लगता है ब्रह्म ज्योति से कोई प्रकट हुआ है, भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, ये ब्रह्म ज्योति तो स्वयं मेरे से निकलती है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये ब्रह्म ज्योति मेरे ऊपर ही आश्रित है, मैं नहीं निकलता इसमें से, ये मुझसे निकलती। तो इस प्रकार तीन रियलाइजेशन। इसी प्रकार जो समाज में सारी जनता है, सारी की सारी जीवात्माएं हैं, चाहे वो पशु योनि में है, चाहे देव योनि में है, चाहे नरकों में है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से इन सब को एक ऐसा वातावरण दिया जाता है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में कि वो यहां पर आके इन वर्ण और आश्रमों का पालन करें, अपने पूर्व ऋतिक पारक कार्यों के अनुसार, कर्मों के अनुसार वो व्यक्ति किसी न किसी कुल में पैदा होता है। अगर वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो क्या करेगा? ब्राह्मण वृत्ति वाले कार्य करेगा। अगर वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है तो क्षत्रिय कार्य करेगा। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जिस कुल में पैदा हुआ है उसे चाहिए कि वो उसी कुल के कार्य को करे, दूसरे और के कार्य न करे। अपने कुल के अपने वृत्ति पूर्वक कार्य करने का मतलब यह हुआ, चाहे वो गलती से भी हो उससे कोई नुकसान नहीं है, उससे उसको लाभ ही होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने वृत्ति पूर्वक कार्य को छोड़कर, अपने वर्णाश्रम कार्य को छोड़कर दूसरों की करता है तो भयावह है। तो ये चार वर्ण आश्रम भगवान ने बनाए ताकि जीवात्मा जो है अपने उन आश्रमों में रहकर, क्योंकि पशु योनि में ये ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास इत्यादि कुछ नहीं होता। देखा आपने कभी पशु जीवन में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सिस्टम नहीं है। 84 लाख योनि में केवल किसमें है? ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में। और इस मनुष्य योनि में भगवान ने समाज को बांट दिया इन चार चीजों में, ताकि हर व्यक्ति ये समझ सके कि मैं किस वृत्ति का हूं और उस प्रकार के कार्य कर सकूं उस पर्टिकुलर वर्ण और आश्रम में रहकर, और उन कार्यों को करूं ताकि मैं अपनी इन कर्मों को करते हुए मेरी चेतना और आगे बढ़ सके। मैं और आगे बढ़ सकूं। और फिर दैवी वर्ण आश्रम धर्म का मतलब है कि जो लोग इन चार वर्णों आश्रमों में हैं उन्हें चाहिए कि वो कृष्ण भावनामृत का के संपर्क में आए, अर्थात उसको दैवी वर्णाश्रम धर्म बना ले। हम चाहे ब्राह्मण कुल में पैदा हूं, लेकिन कलयुग में बताया जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात भवेत द्विज, वेद पाठात भवेत विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। लेकिन जो व्यक्ति जन्म लिया, जिसने जन्म से लेकिन हर पे पहले शुरुआत में क्या माना जाएगा, शूद्र ही माना जाएगा। अब शूद्र का मतलब क्या हुआ कि वो एकदम निकृष्ट स्तर पर है अभी। अब उसको अपनी वृत्ति देखनी है। गुरु का काम क्या होता है, जैसे आज के श्लोक में से चार पांच श्लोक और पहले हैं, उसमें यही बताया गया है कि व्यक्ति को गुरुकुल में होना चाहिए था, ताकि वो अपने किस समाज में किस तरह कार्य करना है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, यह आध्यात्मिक स्टेयर्स बनाई गई थी। सबसे पहले व्यक्ति ब्रह्मचार्य का पालन करे, ब्रह्मचार्य में श्रद्धा इत्यादि करे, गुरु के हित में कार्य करे और घर घर जाके दान इत्यादि मांगे, यह ब्रह्मचार्य का कार्य था। आज के प्रकरण बोल रहे प्रभुपाद जी कि जितना हो सके, जितना लाभ है, ज्यादा ना खाए कम ना खाए, कम खाएगा तो चिंतन करेगा भोजन की, ज्यादा खाएगा तो सो जाएगा, कर्म नहीं कर पाएगा, तो उतना करे जितना उसके लिए हितकारी है उतना खाए। फिर ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ में जाए और फिर संन्यास का प्रयास करे, तो यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसकी। साथ ही साथ जो गृहस्थ में है या इसी चारों चीजों को अपने जीवन में अपना उतार रहा है, लेकिन समाज भी बटा हुआ है और व्यक्ति भी है। समाज में किस रूप में है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र के रूप में। तो ये जब दैवी वर्णाश्रम धर्म है कि हम किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसमें रहकर उसका पालन करें और साथ ही साथ कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार जब भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, जो कि कलयुग का एकमात्र साधन है, और अपने वृत्ति परक कार्य अपने, क्योंकि अब हमारे पास तो गुरुकुल बचा ही नहीं, जिस प्रकार की स्थिति में अब है हमारा समाज, जिस तरह बटा हुआ है समय, जिस प्रकार इसकी संरचना हो रखी है, तो यहां तो गुरुकुल वाली तो एज ही निकल गई। लेकिन फिर भी बताया जाता है जो ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ है, ये सब लोगों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहा है जिससे कि हर व्यक्ति को हर समय गुरुकुल में ही रहना पड़े, अर्थात गुरु के संरक्षण में रहना पड़े या गुरु के द्वारा बताए गए अधिकारियों के संरक्षण में रहना पड़े, ताकि उसको हर समय उसके आश्रम, उसके वर्ण, उसके कर्तव्य को लेकर उसको शिक्षा प्राप्त होती रहे, उसकी देखभाल होती रहे और वह आध्यात्मिक उन्नति करता रहे, ताकि जो जीवन का लक्ष्य है, जो युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछ रहे कि क्या है जीवन का लक्ष्य, आध्यात्मिक जगत में कैसे हो जाए, तो वो आध्यात्मिक जगत में जा पाएगा अपनी चेतना को उस स्तर तक पहुंचाकर। और हम लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं कि मैं कौन से वर्ण में हूं, मैं कौन से आश्रम में हूं, अपने वृत्ति पर कार्य करें, क्योंकि कलयुग में सारे शूद्र अपने शूद्र मान ले, नो प्रॉब्लम। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहा है कि ना तो मैं विप्र हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं, ये सब नहीं हूं मैं, ये सारी की सारी मेरी देहात्म बुद्धि अर्थात देह की आइडेंटिफिकेशन है। हमारी असली आइडेंटिफिकेशन है दास दासानुदास, गोपी भरत पद कमलोर, दास दासानुदास, जो गोपियों का भरण करने वाले कृष्ण हैं, हम तो उनके दासों के दासों के दास हैं, तो हम तो उनके दास हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने कर्तव्य को पालन करते हुए, अपने परिवार का संरक्षण करते हुए, सबको भक्ति में लगाते हुए ये अपने वृत्ति पर कार्य में ला ले इसको और कृष्ण की भक्ति करें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए इतने बड़े संसार की रचना हुई है, ताकि लोग धीरे 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 आगे बढ़े और जिनको भक्तों का संग प्राप्त हो जाएगा, जो हरिनाम के संरक्षण में आ जाएगा, वो व्यक्ति तुरंत जल्दी से शुद्ध होकर भगवान के धाम जा सकेगा, यही एकमात्र रास्ता है। हरे कृष्णा। ग्रंथाश्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।